अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयिरीयाणम् नमो वजायाणम् नमो लोये सर्वसाहूणम्। सुर असुरेन्द्र नरेन्द्र वंदित कर्म मल निर्मल करण वृष तीर्थ के करतार श्री वर्धमान जिन शत शत नमन। अरिहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु है परमेश्चिपन सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है शरण आत्मा ही है शरण। आचार्य कुंदकुंद द्वारा लिखित यह प्रवचन सार नामक ग्रंथ है। बहुत उत्कृष्ट रचना है और वस्तु व्यवस्था को बतलाने वाला ये ग्रंथ है। इसकी 77वीं गाथा में जब आचार्य कुंदकुंद ने पाप और पुण्य दोनों को एक कहा तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जानी चाहिए कि ये वस्तु स्वरूप है, क्योंकि ये पूरा ग्रंथ ही वस्तु व्यवस्था को बताने वाला है। जब वस्तु व्यवस्था को ये ग्रंथ बतलाता है और इस वस्तु व्यवस्था को बतलाने वाले ग्रंथ में लिखा है पुण्य पाप एक है, तो इसका मतलब इसमें कोई शंका हो ही नहीं सकती है।
अलग अलग वस्तु व्यवस्था, पाप और पुण्य एक ही है,
एक ही है ना। ये वस्तु स्वरूप है, वस्तु स्वरूप की दृष्टि से देखें माने स्वभाव की दृष्टि से देखें तो दोनों का स्वभाव भाग दौड़ दौड़ धूप आकुलता उत्पन्न करने वाला कर्म बंधन कराने वाला होने से दोनों एक समान ही है। जो अंतर दिखाई देता है ये अंतर अंतर तो ऊपरी दिखता है, बाकी वास्तव में दोनों में कोई अंतर नहीं है। ये चर्चा अपन ने पहले भी कर ली थी और साथ में ये भी कह दिया कि जो कोई अपनी आत्मा को नहीं जाने और पुण्य ही करता रहे, योगेंद्र देव ने लिखा ऐसा योगसार की 15 नंबर की गाथा में, निज आत्मा जाने नहीं अर पुण्य ही करता रहे। आत्मा को तो नहीं जाना, निज आत्मा जाने नहीं अर पुण्य ही करता रहे तो सिद्ध सुख पावे नहीं संसार में फिरता रहे। बिल्कुल स्पष्ट निर्देश 2000 साल पहले की गाथा है और हम लोग सब क्या कर रहे हैं इसी पुण्य के चक्कर में। उन्होंने देखो अब इसी बात को इन्होंने आगे 79 नंबर की गाथा में बहुत मार्मिक ढंग से स्पष्ट किया है। ये कहते हैं मूल गाथा में, चत्ता पावारंभम समुद्धिदो वासुहम मिचरियमी न जहदि जदि मोहादि लहदि सो अपगम शुद्धम। जीव छोड़ी पापारंभ ने शुभ चरित माओ द्यत भले जो नव तजे मोहादि ने तो नव लहे शुद्धात्मने। कितना स्पष्ट कह दिया, जीव छोड़ी पापारंभ ने, समस्त पापारंभ को जिसने छोड़ दिया है। पापारंभ को छोड़ देने का मतलब जिसके जीवन में किसी प्रकार का कोई पाप नहीं बचा है। कौन होंगे ऐसे जिसके जीवन में सब प्रकार के पाप निकल गए हैं? परमात्मा नहीं होंगे तो कम से कम मुनिराज तो होंगे ही। समस्त पापारंभ, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह, इन पांच पाप रूप परिणति का जिसके जीवन में पूरी तरह से अभाव हो गया है वे महाव्रती तो होंगे ना। सर्व पापारंभों को छोड़ करके समुच्छिदो भली प्रकार से स्थित है सुहम्मी चरियम्मी शुभ चर्याओं में, शुभ चरित्र मा उद्यत भले, शुभ चरित्र में भले प्रकार से जो उद्यत हैं, प्रयत्नशील हैं। लेकिन अब क्या हो गया साहब, ये ऐसे व्यक्ति की बात चल रही है जिसके बाहरी जीवन से किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं की जा सकती है। कोई व्यक्ति उनको देखे तो कहे क्या गजब जीवन है इनका, अरे साहब कभी लाइफ में इन्होंने असत्य नहीं बोला होगा, हिंसा का तो सवाल ही नहीं है, हितमित प्रिय वचन बोलते हैं, चार हाथ जमीन देख करके चलते हैं, 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन करते हैं, किसी प्रकार का कोई लाग लपेट नहीं है, कोई कपड़े लत्ते नहीं रखते हैं, कोई परिग्रह नहीं है, कोई मोबाइल एसी और ये जो झमेले आज की तारीख में दिखते हैं, ये कुछ भी नहीं है इनके जीवन में। क्या सर्वोत्कृष्ट है, किस चीज की महिमा आ रही है हमारे को, बाहरी त्याग की। ये कह रहे हैं संसार परिभ्रमण नहीं रुका उसका, संसार में परिभ्रमण करता रहेगा, ये क्यों, इतना सब त्याग किया है कि नहीं, मोह का त्याग नहीं किया, जो त्याग किया है वो सब बाहरी त्याग किया है, जिसका त्याग करने योग्य था उसका त्याग नहीं किया। कि किसका त्याग करने योग्य है क्या बताओ, बाहरी पदार्थों का त्याग तो इसके स्वयं में हो जाता है, उसमें दम ही क्या है। अभी इन्होंने बाहरी पदार्थों को छोड़ दिया और अभी नहीं छोड़ते तो जीवन पूरा हो जाने पर अपने आप छूट जाता उसमें क्या है, मैं यदि आज घर बार का त्याग नहीं करूं तो इनका त्याग तो हो ही जाएगा ना थोड़े समय बाद में, उसमें दम क्या है, इनको छोड़ देने में दम नहीं है, इनके प्रति राग छोड़ देने में दम है, ये तो छूटे हुए ही पड़े हैं। अभी हम जयपुर से यहाँ आए आपके मियामी में, तो यहाँ पर हम पूछते हैं आपसे कि यहाँ आने पर हम घर छोड़ करके आए कि घर साथ में लाए, परिवार छोड़ के आए कि परिवार को साथ में लाए,
बोलते वही बता
रहे हैं
कि हमारा है
तो
छोड़ा।
हाँ, तो ये कह रहे हैं यहाँ पर कि जो आप छोड़ करके आए हो ना उसे छोड़ना नहीं कहते, रब सब छोड़ करके यहाँ आए फिर भी कह रहे हो छोड़ा नहीं है, कि हाँ ये तो सभी जानते हैं, सारी दुनिया जानती है छोड़ा नहीं है, इसका मतलब सारी दुनिया इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानती है कि छोड़ने का मतलब होता है अंदर से छोड़ना। एक व्यक्ति घर में थे और घर से किसी मुनिराज का उपदेश सुनने गए, घर में खूब पैसा धन संपत्ति सब कुछ है, परिवार है, जमीन जायदाद सब उनके नाम है, मुनिराज के पास में गए, उपदेश सुन रहे हैं, हम आपसे पूछते हैं परिग्रही है या नहीं है, आप कहेंगे परिग्रही है, सारा घर बार है, और वहां बैठे बैठे वहीं बैठे बैठे अभी कुछ नहीं किया उन्होंने, सिर्फ अंदर ने ऐसा निर्णय किया कि मैं तो यहाँ पर दीक्षा अंगीकार कर रहा हूँ सब छोड़ करके। अभी मकान जहाँ की कहाँ है, बैंक बैलेंस जैसा का जैसा है, प्रॉपर्टी किसी दूसरे के नाम की नहीं है, ये लॉकर में जो सामान रखा है वो सब सब कुछ एज इट इज है, और मन में ऐसा संकल्प किया या समझ लीजिए ऐसा निर्णय कर लिया, तो अब हम आपसे पूछते हैं कि अब उसने त्याग किया या नहीं किया, क्या त्याग कर दिया, अब त्याग हो गया उसकी। यदि वो वहां बैठा बैठा दीक्षा ले लेता है तो उसने त्याग किया या नहीं, कि पहले भी तो छोड़ करके आया था 15 मिनट पहले भी, और अभी भी वहीं बैठा हुआ है, आप कह रहे हो 15 मिनट पहले त्याग नहीं था और अब त्याग हो गया, तो क्या अंतर है दोनों में। मोह छोड़ने का नाम असली छोड़ना है, ये छोड़ना इसको दिखता ही नहीं है, इसको बाहरी त्याग ही त्याग दिखाई देता है, इसको बाहरी त्याग की ही महिमा आती है। सच में अपने हृदय पर हाथ रख करके सोचना, एक गरीब व्यक्ति मुनि बनता है और एक बहुत वैभव संपन्न मुनि बनता है, हमारे को किसकी महिमा ज्यादा आती है, अरे साहब इतना सब होते हुए छोड़ा उन्होंने, उसमें क्या दम है बतलाओ मेरे को। कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति त्याग करता है तो हमारे को उसकी ज्यादा महिमा आती है, अरे इंजीनियर थे, बीटेक थे, एमटेक थे, मालूम क्या क्या, और उन्होंने त्याग किया था, और ये तो क्या है, क्या पढ़ा लिखा था, इसमें क्या दम, कैसे देख रहे हो आप बाहरी दृष्टि से देखते हो, आप में देखने की समझ नहीं है कैसे देखा जाता है। त्यागियों को देखना भी नहीं आता आपको, मुनिराजों को देखना भी नहीं आता, आप किस चीज से देख रहे हो। अभी एक पिता के दो पुत्र हैं मान लीजिए, और वो पिता अपनी सारी संपत्ति को रत्नों में हीरों में कन्वर्ट करके और दोनों बच्चों में बराबर बंटवारा करता है। अब लेकिन चूंकि सारी संपत्ति को बेच करके ज्वेलरी वाले के यहाँ से जो डायमंड्स लेकर के आया था उसे एक बॉक्स में लाया था। अब यहाँ जब बंटवारा करता है बराबर बराबर, तो एक के लिए बॉक्स और दूसरे को एक थैली में रखता है। वो पूछता है कि एक को कहता है कि एक ही बॉक्स है, और दूसरे को कहता है बेटा ये बॉक्स एक ही था, ये थैली में है, कोई तुम्हारे को नहीं। नहीं अरे पिताजी क्या बात करते हो, उसमें क्या हो गया, थैली हो चाहे बॉक्स हो, क्योंकि उसकी दृष्टि किस पर है, हीरे पर है। कोई आप मान लीजिए आपने बंटवारा करना हो तो आप क्या पसंद करेंगे, क्या फर्क पड़ता है उसमें, थैली में क्या फर्क पड़ता है, पैकिंग में क्या फर्क पड़ता है, माल कैसा है, इम्पोर्टेंट तो वो है ना। अंदर में जो हीरे हैं वो तो करोड़ों अरबों के हैं, ये इसमें तो कुछ दम नहीं है ऊपर की पैकिंग में। देखो वहां तो सब समझदार हैं, लेकिन जब हम यहाँ बात करते हैं तो यहाँ क्यों ना समझ हो जाते हैं। एक मुनिराज बूढ़े दिखाई दे रहे हैं, कमजोर हैं, शरीर से शिथिल हैं, शरीर सुंदर नहीं है, और दूसरे बहुत सुंदर अच्छे सुलभ नामकरण का उदय चल रहा है। आपको दोनों में से वो क्यों पसंद आते हैं, अंदर का त्याग क्यों नहीं दिखता, अंदर का वैराग्य क्यों नहीं दिखता, अंदर का संयम क्यों नहीं दिखता, अंदर का भगवान आत्मा क्यों नहीं दिखता, अंदर में दोनों अनंत गुण संपन्न है वो क्यों नहीं दिखते। हमारी दृष्टि ये बाहरी चीज पर क्यों जाती है, अंतरंग दृष्टि क्यों नहीं, वो क्यों नहीं दिखता है हमारे को। मैं तो कई बार ऐसा भी कहता हूँ, भगवान महावीर स्वामी ज्यादा तपस्वी थे कि शांतिनाथ ज्यादा तपस्वी थे, कि क्यों, कि शांतिनाथ ने तो 96,000 छोड़ी थी और महावीर ने तो की नहीं थी। शांतिनाथ ने तो कितने खंड का, 6 खंड का राजपाट छोड़ा था, और महावीर ने तो राज्य ही नहीं किया था, वो तो राजकुमार थे। कौन महान है आपकी दृष्टि में, शांतिनाथ ज्यादा महान है कि महावीर स्वामी ज्यादा महान है? हाँ देखिए, ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि किसने कितना छोड़ा, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि कितना रख रखा है। तो रखने के मामले में तो दोनों बराबर है, दोनों ने कुछ नहीं रखा हुआ है। कितना छोड़ने से क्या मतलब है, जिसके पास में जितना था उसने उतना छोड़ दिया, लेकिन रखने के मामले में आदिनाथ हो चाहे महावीर हो चाहे शांतिनाथ हो चाहे पार्श्वनाथ हो, परिस्थितियां और संयोग सबके अलग अलग थे, नहीं रखने की अपेक्षा से सब समान है और वही वास्तव में देखने योग्य है। हमारे चित्त में जो ये चारित्र की महिमा आती है, वो भी बाहरी चारित्र की, बाहरी प्रवृत्ति की, ये बहुत खतरनाक है। अपने आप ये कहेंगे लोग तो आपको निश्चयाभासी कहते हैं या निश्चय वाले कहते हैं, और हम कहते हैं निश्चय वाले तो लोग जगत में दिखते ही नहीं है। जब जब लोग हमारे को ये कहते हैं अरे सोनगढ़ जाते हो, टोडरमल से जुड़े हुए हो, बहुत लोग समाज में ऐसे दिगंबर जैन समाज में सब सब तरफ लोग, अरे निश्चयवासी हो जाऊंगी वहाँ, वो लोग तो सब आत्मा ही आत्मा की बातें करते हैं, वहाँ तो सब ऐसा ही है। कहते हैं अरे निश्चयवासी तो दूर की बात है, पहले निश्चय का पक्ष तो आए अपने को, अभी निश्चय की खबर नहीं है। अनादि काल से इस जीव ने शुद्ध विशुद्ध आत्म तत्व की चर्चा सुनी नहीं है, कभी परिचय ही नहीं ली है, तो अनुभव में आना कितना कठिन है, कितना दूर है। चौथी गाथा में लिखा ना समय सार की, परिचिदानुभूता काम भोग बंधन की कथा, तो इसको अनादि काल से परिचित है, और ये त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की चर्चा इसने कभी सुनी नहीं है। वो चर्चा कितनी दुर्लभ है। ये कहते हैं एक बार तो सुन तो सही, निश्चयवासी होने का भय क्यों रखता है। और जितने लोग दुनिया में दिखाई देते हैं 99.99% लोग सब व्यवहारवासी है। हम लोग भी व्यवहारवास किसे कहते हैं, व्यावहारिक प्रवृत्तियों में होने वाली संतुष्टि, व्यावहारिक प्रवृत्तियों के या बाहरी प्रवृत्तियों के आधार पर, देहाश्रित प्रवृत्तियों के आधार पर अपने आप को महान मानना, अपने आप को श्रेष्ठ मानना, अपने आप को अच्छा मानना कि हाँ ये बहुत अच्छा, अपने आप को धर्मात्मा समझना, और समझते हैं हम अपने आप को धर्मात्मा इन प्रवृत्तियों के आधार पर। कौन अभी तो हम पालन ही कितना करते हैं, यहाँ तो कह रहे हैं चक्का पावारंभम, समस्त पापारंभ को जिसने छोड़ दिया है, जीव छोड़ी पापारंभ ने, सर्व पापारंभ को जिसने छोड़ दिया है उसकी बात कर रहे हैं। नहीं नहीं साहब, आप पंडित जी देखो आप गलत फहमी में हो, हम लोग ऐसे नहीं है, हम लोग थोड़ी ना पुण्य में धर्म मानते हैं। ये तो आप गलत लोगों के बीच में कह रहे हो। हाँ बहुत लोग मानते हैं, लेकिन हम लोग पुण्य में धर्म नहीं मानते। समझ भाई ऐसा ही है ना? ऐसा नहीं है। अभी सोचिए आप, हम सेंटर से बाहर निकलते हैं मंदिर से और कोई व्यक्ति हमारे बारे में बात कर रहा हो, अरे पता है ये संजीव भाई है ना, अरे ये कोई धर्मात्मा नहीं है, ढोंग करते हैं मंदिर आने जाने का, क्या क्या दम है इन सब चीजों में, कि इनके अंदर में क्या है या कैसे पापी है हम जानते हैं इनको, हम क्या कहेंगे उसको, हमारे को कैसा लगता है बोलो, मुझे पापी कह रहा है। तो पता है मैं कितना कितना धर्मात्मा हूँ, मैं पता है कितने टाइम स्वाध्याय चलता है मेरा, कितनी बार समय शिखर जी की यात्रा की है मैंने, कितनी बार गिरनार जी जाया हूँ, पिछले 20 साल में मैंने रात को पानी नहीं पिया, तुम्हारे को पता है तुम्हारे को कुछ कितने ग्रंथों का स्वाध्याय और कितने प्रवचन और ये वो माला जाप पूजा विधान अनुष्ठान और व्रत उपवास और कितना सारा चर्चा हम उसको सुना देते हैं, तो तुम समझते क्या हो, तुम कभी मंदिर आते नहीं हो, बड़े आए मेरे को पापी कहने वाले। हमें ऐसे चोट पहुंचती है जिसकी हद नहीं है, और कोई व्यक्ति हमारे को कहे कि नहीं नहीं ये बहुत धर्मात्मा है तो अपने को कितना अच्छा लगता है। जब कोई व्यक्ति हमारे को धर्मात्मा कहता है तो हमारे को अंदर से ऐसा लगता है क्या कि अरे नहीं नहीं मैं शुभ क्रियाओं में उलझा हूँ, अभी असली धर्म तो हुआ ही नहीं है, ऐसा लगता है आपको अंदर से, या धर्मात्मा सुनकर के प्रसन्नता होती है? उसने जो धर्मात्मा कह दिया है अंदर में उस बात को सुनकर के इतना आनंद आता है, आहा नहीं मैं तो धर्मात्मा, कैसे नहीं हूँ मैं धर्मात्मा। हम लोग रोजाना मंदिर जाते हैं तो धर्मात्मा हो गए, पूजन और स्वाध्याय यदि दो तीन टाइम यदि हमने स्वाध्याय कर लिया तो तीन टाइम स्वाध्याय पढ़ने सुनने से धर्मात्मा हुए क्या? हम नहीं हुए ना, लेकिन समझ रहे हैं ना अंदर में वो मान्यता बैठी हुई है कि नहीं। और अभी यदि और नहीं गले उतरती है बात तो और सुनिए आप थोड़ा सा, और थोड़ा सा आगे बढ़ के देखते हैं अपन। कुछ दिनों से महेंद्र भाई हम स्वाध्याय नहीं कर पा रहे थे, दो तीन महीने हो गए, बिजनेस में इतना उलझ गए, काम धाम में, घर के काम में, घर में कोई फंक्शन था दो तीन महीने, शादी का काम था, इधर उधर बिल्कुल नहीं, अपने को ऐसा लगने लगा अरे यार ये मनुष्य जीवन बेकार जा रहा है, अपन क्या सोच रहे कहाँ फंसे हैं यार, बस अंदर से ऐसा लग रहा है अपने को ये सब बेकार जा रहा है, कुछ नहीं हो पा रहा है, अब बंद हो गया है स्वाध्याय धर्म ध्यान। और फिर दो तीन महीने बाद, चार महीने बाद फिर हमने दोबारा स्वाध्याय करना शुरू किया। अब थोड़ा सा अब थोड़ा सा क्या लगता है अपने को, ठीक है गाड़ी लाइन पर आ गई, तो ये जो ठीक लग रहा है ना हमारे को, ये ठीक व्यवहार बात है। ये जो हमारे को सेटिस, हाँ
पूरा दिन ऐसे काम में निकलता है तो दिल में तो दुख होता ही है,
हाँ।
संसार में
सही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम ये कह रहे हैं ये जो हमारे को संतुष्टि हो गई है अब कि अब ठीक है, अब बहुत अच्छा है, अब बराबर गाड़ी लाइन पर आ गई, अब तो अरे भाई साहब ये अटकने के स्थान है। शुभ भाव को इतना खतरनाक कहा है, इतना खतरनाक कहा है, पाप से ज्यादा खतरनाक कहा है शुभ भाव को, पाप से ज्यादा खतरनाक। क्यों? क्योंकि पाप में धर्म बुद्धि किसी को नहीं होती, ये पुण्य इतना खतरनाक है जो धर्म का भेष पहन करके आया है
वहां जाने नहीं देता है।
ये पुण्य इतना खतरनाक है जो धर्म का भेष बना करके आया है, पहचान नहीं होने देता हमारे को धर्म की, अटका देता है हमारे को, उलझा देता है, फंसा देता है प्रवृत्तियों में क्रियाओं में। पाप करता है तो दुनिया में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो पाप को भला कहता हो, पापी भी पाप को बुरा कहते हैं और पुण्यात्मा तो पाप को बुरा कहते ही हैं। पाप करने वाला भी इस बात को जानता है कि ये छोड़ने लायक है, और दूसरे लोग भी कहते हैं कि अरे क्या कर रहे हो, छोड़ने लायक है, छोड़ो ये सब। दोनों तरफा छोड़ने की शिक्षा मिलती है उसको, उसका अंतरंग भी छोड़ने की कहता है और दुनिया भी छोड़ने की कहती है, और पुण्य में उसका अंदर भी ये कहता है बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ और दुनिया तो मना कौन करेगी, दुनिया प्रशंसा करती है, अंतरंग ये कहता है कि बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, अटक गया बेटा। कितनी मुसीबत है, दुनिया में कौन व्यक्ति ऐसा मिलेगा जो ये कहेगा कि तुम व्रत उपवास करते हो, पूजन करते हो, मंदिर जाते हो, स्वाध्याय करते हो, ये धर्म नहीं है। अपने किसी को क्यों क्यों कहे कोई बात, ये तो आचार्यों की बात है और ज्ञानियों ने निकाल निकाल करके रख दी हमारे सामने, ये महाभाग्योदय है हमारा, समझिए आप। जो कृपालु देव और गुरुदेव जैसे जो मिल गए ना दोनों अपने को एक पुरुष इस पंचम काल में भी, समझिए आप, तो महाभाग्य से 2000 वर्षों से ये गाथाएं बंद पड़ी थी अलमारियों में, दीमक का ग्रास बन रही थी, और ये जो रहस्य इसी में थे, रहस्य तो इसी में था, लेकिन वे मर्मी हुए मर्म सो जाने, कौन जानता है उसका मर्म, जो मर्मी हुए वही उसका मर्म जानता है। निकाला उन्होंने वो मर्म और निकाल करके हमारे खोल खोल करके दिखाया, देखो जरा यहाँ क्या लिखा है, कैसी बात लिखी है यहाँ पर। स्वाध्याय नहीं चलता था पहले, सब जानते हैं अपन लोग, ग्रंथ रख करके स्वाध्याय करने की परंपरा गुरुदेव ने डाली। देखो मैं पढ़ रहा हूँ ये, मैं मन की बात नहीं कह रहा हूँ, ये तुम्हारे शास्त्र में तुम्हारे हाथ में जो उसमें भी देखो लिखा है कि नहीं, एक एक व्यक्ति के हाथ में ग्रंथ खोल करके देखो इसको जरा, बिल्कुल
सबके हाथ में होना चाहिए,
सबके हाथ में होना चाहिए। हम अपने मन की बात नहीं कह रहे हैं, अपने घर की बात नहीं कह रहे हैं, जो हम कह रहे हैं वो बात इसमें लिखी है या नहीं लिखी है ये तुम देखो एक बार गहराई से, फिर निर्णय करना तुम, फिर तुम्हारे को निर्णय करना हो। क्या गजब बातें सामने आ गई है, कौन कहे इस पुण्य को अधर्म, कौन कहे ये भावे तीर्थंकर प्रकृति बंधाए, वो बंधन है, वो बांधने वाली है। जिस भाव से तीर्थंकर कर्म प्रकृति बंधती है वो भाव भी हे है। बहुत हिम्मत चाहिए ये बातें कहने के लिए, क्योंकि ये बात कहते ही सारी दुनिया गला पकड़ती है। लोग कहते हैं ये, अरे लोग मंदिर में नहीं बैठने दे रहे हैं आपको, तो कहें यार ये ऐसी बातें करता है मंदिर बंद कराएगा हमारे, लोगों में बच्चों में संस्कार डालने के बजाय लोग तो पहले ही मंदिर नहीं आते हैं कि मंदिर और छुड़ा देंगे लोगों का, ऐसी चर्चा करेंगे लोग। भाई साहब ये बात क्या कह रहे हैं यहाँ पर, आपकी ये त्याग प्रवृत्ति, आपका ये सेटिस्फेक्शन, ये आपके लिए बहुत ज्यादा घातक है, किसी और से कोई मतलब नहीं है। हम तो व्यक्तिगत बात करते हैं अपने आप के लिए। आप समझिए मैं पहले रात्रि भोजन करता था मान लीजिए, और फिर मैंने रात्रि में अन्न खाने का त्याग किया तो मुझे लगता है अब थोड़ा ठीक है, और फिर मैंने रात्रि को फल फ्रूट और मिठाई खाने का भी त्याग कर दिया, फिर दूध पानी चाय पी चलता था, फिर दूध चाय का भी त्याग कर दिया पानी चलता था, तो अब क्या लगता है थोड़ा सा अब एक दिन पानी का भी
डिफरेंस है।
हाँ अब पानी का भी त्याग कर दिया मैंने, ठीक है ना, लेकिन अभी सारा परिग्रह भी बिजनेस वगैरह करते हैं, दुकानदारी सब चलती है, अब धीरे धीरे करके हमने बिजनेस का भी त्याग कर दिया, ठीक है, और अब तो बस एक ही सब, अब कितने धर्मात्मा हो गए हम, कैसा लगता है अपने को क्या हो गया दुनिया के प्यारे साहब, इनका जीवन देखो आप कितना गजब जीवन है, कि आप जिनका गजब जीवन बतला रहे हो हम उससे बहुत आगे बढ़ करके बात कर रहे हैं फिर भी धर्मात्मा नहीं है। हमारी ये त्याग की परंपरा, हमारा ये छोड़ना, ये हमारे को किस लेवल तक पहुंचाएगा कि मैक्सिमम से मैक्सिमम है द्रव्य लिंगी दशा, यहाँ तक पहुंचा देगा आपको ज्यादा से ज्यादा, और कहाँ पहुंचाएगा बताओ, ज्यादा से ज्यादा परिवार का त्याग कर दोगे, धन वैभव को परिस्थितियां सब का त्याग कर दिया, परिवार का त्याग कर दिया, कपड़ों का त्याग कर दिया, साधु हो गए, मुनि हो गए, संत हो गए, अब बस इससे ज्यादा अब आगे जो त्याग करने योग्य जो असली चीज थी उसका तो त्याग नहीं हुआ ना। हम जिस त्याग की बात कर रहे हैं ये त्याग अंदर में होता है, बाहरी चीजों का तो त्याग होता ही नहीं है,
अलग ही पड़ी है।
हाँ अलग ही पड़ी है, कौन सी चीज त्याग करने योग्य है और कौन सी चीज त्याग नहीं करने योग्य है पहले उस चीज को जानो तो सही एक बार। अभी सत्य समझ ही नहीं है, अभी ये वस्तु स्वतंत्रता अभी ख्याल में ही नहीं आती है हमारे, ये स्वतंत्रता ख्याल में नहीं आने की वजह से बहुत गड़बड़ी होती है। अंदर में त्यागोपादान नाम की शून्यत्व शक्ति है, 16 नंबर की शक्ति, त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति, जो त्याग से और उपादान से दोनों से शून्य, ये भगवान आत्मा पर पदार्थों को ग्रहण भी नहीं करता और पर पदार्थों का त्याग भी नहीं करता। आज तक किसी एक पुद्गल परमाणु को इसने छुआ भी नहीं है, स्पर्श भी नहीं किया है, और यही इसकी सुंदरता है चैतन्य की। चैतन्य की ये कैसी सुंदरता होगी कि अनादि काल से कर्मों के बीच में रहा लेकिन कर्मों ने इसको छुआ तक नहीं। ये अद्भुत सुंदरता है, ये सौंदर्य है, उस आत्म तत्व का ऐसा सौंदर्य है। और सुंदरता कहते ही उसे है, सुंदर चीजें छूने के योग्य नहीं होती, छुआ नहीं जाता उसे। छूना ही इस बात को सूचित करता है कि अभी मलिन हो जाएगी, गंदी हो जाएगी। अस्पर्श, जितने म्यूजियम और अच्छे अच्छे सुंदर चीजें होते हैं, आप देखने के लिए जाओ वहाँ तख्ती लगी रहती है, अड़वो नशी नथी, डोंट टच, छूना नहीं इसको। कि क्यों छूओगे तो गंदी हो जाएगी। और आचार्य कुंद कुंद स्वामी समयतार की प्रारंभिक गाथाओं के अंदर कहते हैं, पंचास्तिकाएं में कहते हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को छूता भी नहीं है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को स्पर्श नहीं करता। जहाँ आकाश द्रव्य है वहीं काल द्रव्य है, वहीं धर्म अधर्म है, वहीं पुद्गल परमाणु है, वहीं जीव है। आकाश के एक प्रदेश पर छहों द्रव्य रहते हो, प्रत्येक प्रदेशों पर आकाश के लोकाकाश के छहों द्रव्य व्याप्त रहते हो, तथापि कहते हैं एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को छूता नहीं है। पंचाप्तिका सातवीं गाथा में कहते हैं, अन्नोणम पवित्रता अदंता होगा समण अन्नस्त मेलंता भी नित्यम सगम सहाहम न विजहंती। एक दूसरे में मिलते हुए दिखाई देने पर भी कोई भी वस्तु कभी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ती है, ये असली धर्म है। इसके लिए आचार्य कुंद कुंद ने कहा, वस्तु स्वभाव धम्मो, हम जिस व्यवहार धर्म में उलझे तो धर्म ही नहीं है। अरे धर्म की परिभाषा तो बतलाओ हमारे को, कहाँ लिखा है कि पूजन पाठ करना धर्म है। शास्त्रों में धर्म के संदर्भ में जो परिभाषाएं मिलती है, आप जरा उन परिभाषाओं को देखो एक बार, क्या परिभाषाएं मिलती है। जरा वस्तु स्वभाव धम्मो, वस्तु स्वभाव को धर्म कहते हैं, और हर वस्तु का अपना स्वभाव है। अग्नि की उष्णता उसका स्वभाव है, जल की शीतलता उसका स्वभाव है, मिश्री का मीठापन उसका स्वभाव है, नमक का खारापन उसका स्वभाव है, आत्मा का जानना देखना स्वभाव है, कुंडल का स्पर्श गंधवर्ण स्वभाव है। सबका अपना अपना स्वभाव है, और सबका जो अपना अपना स्वभाव है और जो स्वभाव से सहित है उसी को तो धर्म कहते हैं, वस्तु स्वभाव धर्म। वस्तु के स्वभाव को ही तो धर्म कहा है। तो इस दृष्टि से देखें तो प्रत्येक वस्तु धर्मात्मा है, स्वभाव से ही धर्मात्मा है। अरे साहब कैसी बात कर रहे हो, यदि प्रत्येक वस्तु धर्मात्मा है और हम भी अपने स्वभाव को कभी नहीं छोड़ते, हम भी अपने स्वभाव से सहित ही रहते हैं, तो फिर हम भी धर्मात्मा ही हो गए। फिर तो हर जीव धर्मात्मा हो गया, फिर धर्म करने की बात कहाँ रही। धर्म करने की बात ऐसी है कि स्वभाव से तो धर्मात्मा है लेकिन अपने उस धर्मात्मापन धर्मात्मा स्वभाव को पहचानता नहीं है, इसलिए पापी बना सकता है। स्वभाव से प्रत्येक जीव धर्मात्मा है, अब पर्याय में धर्मात्मा होने के लिए क्या करे। कि पर्याय में धर्मात्मा होने के लिए अपने धर्म का, अपने धर्मात्मा स्वभाव का, अपने वस्तु स्वभाव उस धर्मात्मा का, उस धर्म पने का श्रद्धान करो, पर्याय में भी धर्मात्मा हो जाते। कितना सरल सी बात है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को जो धर्म कहा है, दंशन मूलो धम्मो जो कहा है, चारित्रम खलु धम्मो जो कहा है, ये सारी बातें वस्तु स्वभाव धम्मो से जुड़ी हुई है। जगह जगह लोग लिखते तो हैं, हो सकता है आपको कन्वेंशन के अंदर वहाँ कहीं बैनर पे लिखा हुआ मेरे वस्तु स्वभाव धम्मो,
ये तो हर मंदिर पर लिखा है,
हर मंदिर पर लिखा है,
अनंत दर्शन अनंत ज्ञान अनंत चारित्र
बोलो। लेकिन इसका मतलब क्या है, ये जो पंक्ति मिलती है इसका मतलब क्या है, चारित्रम खलु धम्मो जो लिखा है उसका मतलब क्या है। लोग पता है हमारे ऊपर आक्षेप लगाते हैं, लोग ये कहते हैं अरे अरे ये तो श्रद्धा ज्ञान वाले हैं, बस ये तो चारित्र तो कुछ है नहीं, वो पंक्ति दिखाते हैं, देखो चारित्रम खलु धम्मो, पंडित जी चारित्र के बिना कुछ नहीं होगा, एक आध तो दिखाओ, आप लोगों में से कोई मुनि बनाओ, जब तक मुनि नहीं बनेंगे तब तक मोक्ष नहीं जा सकते, मुनि बने बिना मुक्ति नहीं होती है, चारित्री धर्म है, चारित्री धर्म है, देखो आप लिखा है साफ साफ आचार्य कुंद कुंद ने। भैया लिखा है वो तो हम भी जानते हैं, लेकिन चारित्र को जो धर्म लिखा है उसका अर्थ क्या है ये तो बताओ। सौचम तारी की सातवीं गाथा है ना इसकी, जिस चारित्र को धर्म लिखा है उस चारित्र का अर्थ क्या है ये बता दो आप हमारे को। जिसे तुम चारित्र समझ रहे हो उस चारित्र को धर्म नहीं लिखा है। आपको आप इस चारित्र को धर्म समझ रहे हो, आप ये कहकर के हमारे आचरण को देखना चाहते हो। हम कह रहे हैं इस चारित्र को धर्म नहीं लिखा है, तो कौन से चारित्र को धर्म लिखा है कि ये चौथाई पंक्ति जो आपने पढ़ी है, 1/4 क्वार्टर जो आपने पढ़ लिया है इतना सा, जरा इसको पूरी गाथा को पढ़ो आगे पीछे, आपको सब क्लियर हो जाएगा कौन से चारित्र को धर्म का है। बहुत स्पष्ट शब्दों में कुंद स्वामी ने लिखा है कौन सा चारित्र धर्म है कि मोह आदि से रहित, द्रग मोह क्षोभ विहीन, निज परिणाम समता भाव है, चारित्र ही बस धर्म है, वह धर्म समता भाव है। एक गाथा है, कौन से चारित्र को धर्म कहा? समता भाव रूप चारित्र को। चारित्र ही बस धर्म है और वो धर्म कैसा है? समता भाव स्वरूप है। और वो समता भाव कैसे होता है कि द्रग मोह दर्शन मोह और क्षोभ माने चारित्र मोह विहीन उससे रहित आत्मा का परिणाम, उसे हम कहते हैं ये है चारित्र। दर्शन मोह के चले जाने पर और चारित्र मोह के चले जाने पर, या दर्शन मोह की निवृत्ति पूर्वक जो रागादिक का त्याग हुआ, जो रागादिक से निवृत्ति हुई, जो कषायों से निवृत्ति हुई, जो अनंतानुबंधी चली गई, जो अप्रत्याख्यान चली गई, जो प्रत्याख्यान चली गई, तो उससे उत्पन्न होने वाली वीतराग परिणति को चारित्र कहते हैं। उस असली चारित्र की खबर नहीं होने की वजह से हमें बस चारित्र 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 के गीत गाते रहते हैं।
खतरनाक बात वो हो जाती है जिसके सामने ये बात निकलती है, वो लोग के क्या कहते हैं, हम इतना करते हैं तो इतना तो अच्छा कहो, समझे मेरी बात? बस ये जो खतरनाक बात है ना, इतना अच्छा कहो बस
अटक गए, अटक गया। हम तो हम ये कहते हैं कि आप जितना कर रहे हैं तो ठीक, लेकिन इतना पर्याप्त नहीं है, इतने से अपने आप को महान मत समझ लेना, ये अटकने की जगह है। मतलब कोई व्यक्ति को किसी जगह पर पहुंचना हो और रास्ते में कहीं जाकर के और रोड पर चलते चलते किसी पेड़ की छाया में खड़ा हो जाए तो कहे मैं इतना चल लिया, इतने को तो अच्छा कहो कि देख इतने को अच्छा तो तब कहेंगे जब यहाँ से आगे बढ़ेगा। तेरा यदि आगे का लक्ष्य हुए तो इतना चलना भी सार्थक है, और तेरा आगे का लक्ष्य न हुए तो यहीं रुके तो सब बेकार है। तो क्या अच्छा है बतलाओ, मंजिल तक नहीं पहुंचे तो। हम आपसे पूछते हैं कि आपने जितना पालन किया है और आप जितना बाहरी आचरण का पालन करते हो, आप इन सब का पालन करने के बाद में क्या कहते हो? आगे बढ़ने की बात कहते हो या इतने को अच्छा कहते हो? यदि आप इसे छोड़ करके, इस वृक्ष की छाया को छोड़ करके और आगे बढ़ते हुए इसका भी त्याग करके आगे बढ़ने के लिए भी तैयार हैं, तो आपने जितना किया है हम उसकी प्रशंसा करते हैं। आप जितना स्वाध्याय करते हैं हम उसकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन स्वाध्याय में अटकने के लिए नहीं। स्वाध्याय में अटक गया तो फिर अब तो नीचे जाएगा। अरे पुण्य कब तक चलेगा, ये शुभ भाव कब तक चलेगा? करणानुयोग बिल्कुल स्पष्ट नियम है, अंतर्मूर्त से ज्यादा शुभ भाव रहता नहीं है, अंतर्मूर्त से ज्यादा अशुभ भाव भी नहीं रहता है। हर अंतर्मूर्त में शुभ से अशुभ और अशुभ से शुभ बदलता ही रहता है। और ये शुभ भाव जो तुम कह रहे हो ना, ये हमने किया है, हम धर्मात्मा है, हमने धर्म कर लिया है, ये शुभ भाव आपके हाथ की बात नहीं है, ये शुभ भाव आपके बस की बात नहीं है, शुभ भाव भी आपके कंट्रोल में नहीं है। लो कैसी बात कर रहे हो, शुभ भाव हमारे कंट्रोल, ऐसा कैसे कहते हो? कह रहे हैं ना हम आपसे, आपके हाथ में हुए तो आपको कभी कभी ऐसा क्यों लगता है कि अरे अरे मेरे मन में ऐसा भाव क्यों आ गया, अरे मुझे तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए था। इसका मतलब आपके कंट्रोल में नहीं है वो चीज। और यदि आपके ही कंट्रोल में हो तो हम आपसे कहते हैं एक बात बताओ हमारे को, आपके कंट्रोल में है ना ये, तो आप अच्छे से अच्छा पुण्य, अच्छे से अच्छा शुभ भाव क्यों नहीं करते हो? अच्छे से अच्छा मतलब कौन सा? सर्वोत्कृष्ट शुभ भाव करो ना। कौन सा होगा रमेश भाई सर्वोत्कृष्ट शुभ भाव? शुभ भाव, सर्वोत्कृष्ट शुभ भाव या पुण्य बंधन तो तीर्थंकर प्रकृति, उससे बढ़कर और पुण्य बंधन और क्या होगा। सब बांध लो ना तीर्थंकर प्रकृति। क्यों जो लोग कहते हैं सोलह कारण भावनाओं को बांधने से तीर्थंकर प्रकृति बनती है, तो सोलह कारण भावनाओं को भाव आप तीर्थंकर प्रकृति बांधने के लिए सोलह कारण का अभ्यास करो, बन जाएगी ना तीर्थंकर प्रकृति। ऐसे थोड़ी ना बन जाएगी,
पागलपन है ना।
और क्या है,
क्योंकि हम चाहते हैं बनने के लिए,
होता ही नहीं है वो, हम यही कह रहे हैं वो हो ही नहीं सकता है, वो संभव ही नहीं है। सोलह कारण भावनाओं को बांधने से तीर्थंकर प्रकृति नहीं बनती, ये तो सोलह कह दिया गया है, बहुत स्थूल कथन है उपचार से। वास्तव में तो सम्यक दर्शन पूर्वक अंदर में जो भावना जागृत हुई, जैसा भी परिणाम हुआ, सर्वोत्कृष्ट की सर्व जीवों का भला हो, सब लोग इस बात को सुने, सब इस बात को समझे, सब इस बात को स्वीकार करें, कैसी अपूर्व बात है। और सारे जगत के जीवों को समझाने, बताने, सिखाने की ऐसी जो अंदर में तीव्र भावना थी शुभ भाव स्वरूप, उससे बन जाती थे संकर कर्म प्रकृति। ऐसा कर्म बनता है कि वो सर्व जगत के जीव उनसे लाभ लेते हैं, तीन लोक के जीव लाभ लेते हैं उससे। बांध सकते हैं, क्यों नहीं बांध सकते साहब, कर लेंगे एक दिन। मैं अरे तुम कर लेंगे एक दिन, पता है कितना लंबा काल लग जाएगा, अभी के 24 तो हो चुके और आगामी 24 की घोषणा हो चुकी। आगामी 24 में तो नाम नहीं है ना कहीं सजीव हो जा, और फिर उसके आगामी, कोई बात नहीं साहब उसके आगामी में, अरे भाई साहब उसके आगामी तक पहुंचने में तो 19 कोड़ा कोड़ी सागर लगेंगे, पता है तुम्हारे। हमने मारीची की चर्चा की थी, एक कोड़ा कोड़ी सागर बचा था उसका, उसमें तो कितना लंबा काल था और वो विरोध करने के लिए खड़ा हो गया, सोच लो 19 कोड़ा कोड़ी सागर तक की तो छुट्टी हो गई। तैयार हैं आप, 19 कोड़ा कोड़ी सागर, एक सागर में असंख्यात वर्ष, ऐसे दो सागर, तीन सागर, करोड़ सागर, फिर करोड़ सागर करोड़ बार, फिर करोड़ सागर करोड़ बार पूरा हो गए, ये सब मिलकर के एक हुआ, और फिर करोड़ सागर करोड़ बार फिर दो हुआ, फिर करोड़ सागर करोड़ बार ये तीन कोड़ा कोड़ी हुआ, 19 कोड़ा कोड़ी सागर की छुट्टी हो गई। अरे आगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, तो तीर्थंकर में ऐसे चक्रवर्ती बन जाएंगे और क्या। इतना तो ये तो पुण्य बांध सकते हैं आप, क्या बांधेंगे आप, जितने काल में तीर्थंकर 24 होते हैं चक्रवर्ती की, ठीक है तो और आधी है।
बुद्धि खतरनाक है,
बुद्धि खतरनाक है, पुण्य बांधने की बुद्धि खोटी है। लेकिन पुण्य बांधने से पुण्य बंधता ही नहीं है, पुण्य की चाह में पुण्य नहीं बंधता। परछाई को पकड़ने का कितना प्रयास करें कि वो परछाई पकड़ने आ जाए, दौड़ते रहे हम, अपने ही जो शेडो पड़ रहा है उसके पीछे हम दौड़ते रहे उसको पकड़ने के लिए, सब हाथ में आ जाएगी, और हम अपने रास्ते करें चलें तो वो पीछा करती है। ऐसा है वस्तु स्वरूप, आप पुण्य के पीछे भागेंगे तो पुण्य हाथ नहीं लगेगा, और आप अपने रास्ते चलेंगे धर्म के मार्ग पर, यथार्थ धर्म की बात करेंगे तो पुण्य आपके पीछे पीछे आएगा। पुण्य बांधने वालों को, पुण्य चाहने वालों को वो पुण्य नहीं बंधता, सर्वोत्कृष्ट पुण्य भी उन्हीं जीवों के जीवन में बंधता है जो पुण्य को हे कहते हैं, जो पुण्य को हे मानते हैं। ज्यादा पैसे को चाहने वालों के पास भी पैसा नहीं आता, जिनको पैसे की कदर नहीं होती उनके पास में पैसा बरसता है। इस लोक में भी ऐसा देखा जाता है, जो पैसे की परवाह नहीं करते ना, और जो ज्यादा जोड़ते रहते हैं ना, मैं जोड़ता ही नहीं है, इकट्ठा ही नहीं होता है। पैसा इकट्ठा करने से इकट्ठा होता है क्या, जोड़ने से जुड़ता है क्या। चक्रवर्ती सम्राट चक्रवर्ती बनने के लिए कितने बिजनेस खोलते होंगे जी, कितने दुकानें चलाते होंगे। अच्छा हम कितने बिजनेस खोलेंगे चक्रवर्ती बन जाए, नहीं हो सकता, होता ही नहीं। माने चक्रवर्ती कौन बनते हैं, तीर्थंकर कौन बनते हैं, दुनिया में सर्वोत्कृष्ट पुण्य प्रकृतियां किनके बंधती हैं, जिन्होंने पुण्य का आश्रय लिया हो उनके नहीं, जिन्होंने पुण्य का आश्रय छोड़कर त्रिकाली ध्रुव का आश्रय लिया हो उनके बनती है। 63 शलाका पुरुषों में से एक भी महापुरुष की पदवी ऐसी नहीं है जो मिथ्या दृष्टि के जीवन में बंधती हो, मिथ्या दृष्टि को प्राप्त होती हो। 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 नारायण, 9 प्रति नारायण, 9 बलभद्र, यहाँ तक कि कामदेव आदि भी सभी, नारद, रुद्र, कामदेव, कुलकर, सब पहले सम्यक दर्शन, उसके बाद में। कहता अरे साहब क्या क्या रिद्धियां होती है उनके पास में, कैसी निधियां होती है चक्रवर्तियों के पास में, नौ रत्न और नौ निधियां, ये सारी निधियां और सारे रत्न पहले हमारे एक रत्न के आगे। सम्यक दर्शन रूपी एक रत्न हुए तो 14 रत्न नौ निधियां प्राप्त करने का की पात्रता हुए, अदरवाइज मिले ही नहीं। ऐसे स्टेप है सम्यक दर्शन की प्राप्ति, सम्यक दर्शन के बिना कुछ नहीं मिलता, और सम्यक दृष्टि जीव को उसकी क्या होती नहीं है। चक्रवर्ती की संपदा और इंद्र सरी के भोग, काग बीच समझिनत है सम्यक दृष्टि लोग। चक्रवर्ती की संपदा और इंद्रों के भोग कव्य की बीच के समान मानते हैं सम्यक दृष्टि लोग। कव्य की बीच जो किसी काम नहीं आती है उसके समान, किसी काम की नहीं है। अरे चिड़िया कबूतर की बीट की यदि बात करें तो वो तो फिर उपचार में औषधि आदि में काम आती है, लेकिन इस वैभव संपत्ति को सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव कैसा समझते हैं? कमरे की बीट के समान समझते हैं। निरर्थक है, असार है, सुख नहीं है, घर में रहते हैं लेकिन अलिप्त रहते हैं। देखो छूटेगा कब वो अलग मैटर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन छोड़ने योग्य है ये अभी जानना पड़ेगा। घर में रहते हुए ये समझना पड़ेगा कि ये रहने योग्य नहीं है। तन में रहते हुए तन के प्रति अपनापन छोड़ा जा सकता है, तन में रहते हुए भी अपनापन छूट जाता है, तन रहते हुए भी परमात्मा बन जाते हैं, शरीर रहते हुए भी भगवान बन जाते हैं, लेकिन शरीर के प्रति अपनापना हो तो भगवान तो बहुत दूर की बात है, मुनिराज तो बहुत दूर की बात है, गुणस्थान पहले से चौथा नहीं हो पाता। आप देखो तो सही, शरीर छोड़ना है कि शरीर के प्रति मोह छोड़ना है? एक ही बात कह दी, वो कौन सा मोह होगा? जो नव तजे मोहादि ने, जो नव तजे मोहादि ने तो नव लहे शुद्धात्मा ने, यदि वो मोहादि को नहीं त्यागता तो उसे शुद्धात्मा की प्राप्ति नहीं होती। आखिर वो कौन सा मोह होगा जिसको छोड़ने की यहाँ बात की है? वो दर्शन मोह है, जैसे शास्त्रीय भाषा में दर्शन मोह कहकर के पुकारा है, बड़ा मार्मिक स्वरूप है। कहीं इसके चक्कर में हम अटक करके न रह जाएं, इस शुभभाव के चक्कर में, इसके लिए बहुत खतरनाक शब्दों का प्रयोग किया है अमृतचंद्र स्वामी ने इसकी टीका में। मैंने इसकी टीका की चर्चा करेंगे, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है जो दिल दहलाने वाला है। ऐसा कहते हैं कि आप देखो तो सही, इस पुण्य को जिसको आप अच्छा समझ रहे हो, ये पुण्य कितना ज्यादा खतरनाक है, इसकी भयानकता दिखाई है, इसकी भयंकरता का चित्रण किया है। अपन कल इसके संदर्भ में अपेक्षित विस्तार से और चर्चा करेंगे, अभी की बात को नहीं।